الحمد لله وكفى وسلام وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. سورة انعام کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں اس کلاس میں، جو کہ آج کل درس قرآن کی کلاس پیر اور بدھ دونوں دنوں میں چل رہی ہے. آیات نمبر 42 سے لے کے 45 تک. ان آیات کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں، اور معارف و مسائل ہم شروع کر چکے تھے، جس میں پہلے دو پیراگرافس ہم نے پڑھ لیے تھے پیج نمبر 318 کے اوپر. 318 پر حضرت نے فرمایا تھا کہ آیات مذکورہ میں شرک و کفر کا ابطال اور توحید کا اثبات ایک خاص انداز میں کیا گیا ہے. یعنی یہ دونوں باتیں، شرک اور کفر کا ابطال یعنی ان کو جھوٹا ثابت کرنا، غلط ثابت کرنا، اور توحید کو صحیح ثابت کرنا کہ اللہ ایک ہے اور خالق مالک اور قادر ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی کنٹرول نہیں رکھتا چیزوں کے اوپر، یہ ہے توحید. تو اس کو ثابت کرنا، ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں، ابطال بھی اور اثبات بھی، یہ اتنی اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو انداز بدل بدل کر کے دہرا رہے ہیں. بار بار قرآن مجید کے اندر اس موضوع کو مختلف انداز سے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کوشش کیا کر رہے ہیں، مطلب کر رہے ہیں، کوشش تو ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ایکچولی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی سمجھنا نہ سمجھنا یہ ہمارے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پوری طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنا اہم ہے ہمارے لیے کہ صرف ایک دفعہ یہ بات کر کے بس ختم نہیں کر دی گئی، بلکہ بار بار اور ایک انداز سے نہیں بلکہ مختلف اندازوں سے یہ بات کی گئی، ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو غلط باتیں ہیں اور جو کفر ہے اور شرک ہے اور ناشکری ہے، تو ان کو باطل ثابت کرنا یعنی ان کا انکار کرنا اور ان کو جو ہے وہ دلیلوں کے ذریعے سے سمجھانا کہ یہ غلط ہیں، یہ کتنا اہم ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو اچھی باتیں ہیں ان کو ریپیٹ کرنا اور سمجھانا اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ پیش کرنا، یہ کتنا اہم ہے، ٹھیک ہے. ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ ہم دوسرے کام کریں گے لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم صرف ابطال کر رہے ہیں، صرف ابطال کر رہے ہیں باطل چیزوں کا، اور ہم اس بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اچھی باتوں کا اس بات نہیں کر رہے کہ بھئی اچھی باتیں کیا ہیں، کیا کرنی چاہیے. تو یہ بھی غلط ہو جاتا ہے کہ بھئی صرف باطل کا ابطال کریں گے تو، اور اگر اس بات نہیں کریں گے اچھی چیزوں کا، تو پھر وہ بھی فائدہ مند نہیں ہوگا. ایک حد تک فائدہ مند ہوگا لیکن اس سے زیادہ نہیں فائدہ مند ہوگا. اسی طریقے سے ہم صرف اچھی باتوں کا اس بات تو کر رہے ہیں لیکن باطل باتوں کا انکار نہیں کر رہے، ابطال نہیں کر رہے، تو یہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ بن جاتی ہے. ایکچولی یہ بات بہت زیادہ نقصان دہ بن جاتی ہے، کیونکہ جب آپ بری باتوں کا ابطال نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، बल्कि सिर्फ अच्छी बातों का इस बात कर रहे हैं, तो इंसान के जहन के अंदर जो शैतान ने वसवसे डाले हुए होते हैं और गलत फहमियां पैदा की हुई होती है ना, वो अक्सर जो है वो परसिस्ट कर रही होती हैं, वो मौजूद होती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो अच्छी बातों का इस बात आप कर रहे होते हैं ना, वो उसके दिमाग में घुस नहीं रही होती हैं। ठीक है, वो उनके लिए जगह ही नहीं बनी हुई होती, क्योंकि पहले से जो है वो बातिल बातें उसके दिमाग को कंज्यूम करी हुई है, दिमाग के अंदर भरी हुई है बातिल बातें। ठीक है, तो बातिल बातों का इब्ताल जो है वो इंतहाई जरूरी होती है, ताकि जगह बने अच्छी बातों के दाखिल होने के लिए, जगह बने। ठीक है, बिल्कुल सादा सी मिसाल कि अगर किसी कमरे के अंदर कचरा मौजूद है, तो अब उस कचरे वाले कमरे के अंदर आप जो है वो अच्छी अच्छी नई चीजें ला करके ऐड कर दें, तो क्या वो कमरा अच्छा लगेगा कि भाई प्यारी प्यारे नए नए फर्नीचर और नई नई डेकोरेशन आपने ला करके ऐड कर दी है? बल्कि हर कोई यही कहेगा ना, और बात भी समझ में आती है कि भाई पहले कचरे को साफ करोगे, तब जो है वो अच्छी बातें वहां पर फिट होंगी, और अच्छी बातों अच्छी चीजें जो है वो वहां पर फिट होंगी, और अच्छी चीजों से वो कमरा अच्छा लगेगा। आपने सफाई तो करी नहीं है, आप गंदी ही जगह के ऊपर जो है वो अच्छी चीजें ऐड करे चले जा रहे हैं, तो इससे तो फिर वो कमरा खूबसूरत नहीं बनेगा। बहरहाल, आगे हम पढ़ रहे हैं तीसरे पैराग्राफ में कि ये मजमून साबिता आयात का खुलासा है, उनमें बतौर फर्ज की ये बताया गया कि तुम्हारे कुफ्र और शिर्क और नाफरमानी की सजा में तुम पर इसी दुनिया की जिंदगी में भी अजाब आ सकता है, इसी दुनिया की जिंदगी में भी अजाब आ सकता है, और बिलफर्ज जिंदगी में अजाब ना आया तो कयामत का आना तो यकीनी है, जहां इंसान के सब आमाल व अफआल का जायजा लिया जाएगा और जजा और सजा के अहकाम नाफिज होंगे। ठीक है, तो अगर दुनिया की जिंदगी में तुम्हें कोई बहुत बड़ी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा, ठीक है, यहाँ पर अजाब से मुराद जो है ना वो बहुत बड़ी मुसीबत जिसमें कि आपके सारी नेमतें खत्म हो जाएं और आप बिल्कुल ही जो है ना वो दुनिया के लिए नमूने इबरत बन जाएं, यहाँ पर ये मुराद है कि अगर दुनिया की जिंदगी में ऐसा मामला आपके साथ ना भी पेश आया, तो भाई आखिरत में तो जब हिसाब किताब होगा तो वहां पर तो ये जरूर से पेश आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मतलब नहीं है। ठीक है, देखें, इब्दाल करना कि जहन में ना आपकी गलतफहमी कोई पैदा अगर हुई भी है तो उसको निकालना भी बहुत जरूरी है ना, तो सिर्फ ये कि एक फैक्ट का जो है वो हम इस बात कर दें कि भाई आखिरत में हिसाब किताब होगा, ठीक है, तो वो अगर आपके जहन में कोई गलतफहमी पैदा हुई भी है तो वो दूर दूर नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से गलतफहमी को भी हमें गेज करना होता है, पहले से जो है ना वो सोचना होता है कि लोगों के जहनों के अंदर क्या गलत फहमियां पैदा हुई हुई हैं। ठीक है, और उन गलत फहमियों का इनकार करना, इब्तार करना होता है, तो इसी वजह से हम ये बात यहाँ पर समझाना जरूरी समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि गुनाह का अजाब जो है वो सिर्फ आखरत की जिंदगी में होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि गुनाह का अजाब जो है वो इस दुनिया की जिंदगी में भी हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि वो एक मशहूर शेर आप अक्सर सुनती रहती होंगी कि अदल व इंसाफ फकत हशर पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। ठीक है, यानी इसी दुनिया की जिंदगी में गुनाहों की सजा जो है वो शुरू हो जाती है, और उसकी बहुत सारी शक्लें और सूरतें जो है वो हमारी जिंदगी में आ रही होती हैं। भाई, दिल की बेचैनी, बेइत्मीनानी, ये गुनाह ही की सजा होती है। ठीक है, मईशत का तंग हो जाना, यानी आपकी जिंदगी से बरकत का खत्म हो जाना, ये गुनाह ही की सजा होती है। ठीक है, औलाद का नाफरमान बन जाना, ठीक है, औलाद का आपके लिए सुहाने रूह बन जाना कि उसको वो आपको तकलीफ दे रही है, परेशान कर रही है, ये गुनाह की ही सजा होती है। ठीक है, तो बहुत सारी, और फिर ये तो इनफरादी सजाएं होंगी ना, घर के अंदर की सजाएं। ठीक है, मईशत का तंग हो जाना और दिल का सुकून जो है वो रुखसत हो जाना और औलाद का जो है वो सुहाने रूह बन जाना, ये तो घर के अंदर की सजाएं। फिर घर के बाहर जो सजाएं हो रही होती हैं, कि मुआशरे का इत्मीनान भी खत्म हो जाता है, ठीक है, आप खौफ में मुब्तला होते हैं कि भाई मुझसे जो है वो फलानी चीज छिन ना जाए, कोई चोरी ना कर ले, कोई डाका ना डाल ले। कल ही हमारे कराची के एक दोस्त जो है वो बताने लगे कि कराची के अंदर से यही खबरें आ रही हैं कि जो कुर्बानी के जानवर लोग खरीद के लेकर के आ रहे हैं, वो ना सिर्फ ये कि चोरी हो रहे हैं बल्कि डाका डल रहा है। लोग जो है वो गन पॉइंट के ऊपर कुर्बानी के जानवर जो है वो छीन करके लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। और उसी तरीके से पहले भी था, ये तो अभी पहले पहली दफा ऐसा नहीं हो रहा, ये पिछले सालों में भी ये हो रहा था। हत्ता कि जो कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो अब एक एक जो है वो बकरा आजकल 1 लाख रुपए का मिल रहा है। अब इतनी महंगाई का होना, ये भी तो गुनाहों की सजा है ना, राइट। 1 लाख का एक बकरा मिल रहा है आजकल, और 3 लाख की जो है वो गाय मिल रही है। कम से कम जो रेट है ना गाय का, 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख से शुरू होता है ये, ठीक है। तो अब जो बकरा मंडी शहर के बाहर बनी हुई है, जाहिर है हाईवे को क्रॉस करके जो है वो आपको बकरा मंडी जाना पड़ता है, गाय मंडी जाना पड़ता है, तो अब लोग जो है वो पैसे लेकर के जाते हैं, तभी तो गाय खरीद के लेकर के आएंगे ना। वहां पे क्रेडिट कार्ड तो नहीं चलता, बकरा मंडी में लोग क्रेडिट कार्ड मशीन लेके तो नहीं बैठे हुए होते पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो कैश लेकर के जाते हैं। तो अब डाकुओं को पता है कि लोग कैश लेकर के जो है वो बकरा मंडी आएंगे, तो रास्ते में जो है वो मौजूद होते हैं और गन दिखा करके जो है वो कैश ले लेते हैं, ठीक है। और उनको पता है कि भाई एक एक बंदे के पास जो है वो 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए होंगे, और 4 लाख रुपए से जो है वो डाकुओं का काफी सारा काम बन सकता है, ठीक है। तो इस वजह से अब इतना खौफ है कि लोग मिल करके, बहुत सारे लोग मिल करके जाते हैं गाय खरीदने के लिए, बकरा खरीदने के लिए, ठीक है। और जो कैश होता है ना उसको डिवाइड कर लेते हैं मुख्तलिफ लोगों की जेबों के अंदर, उनकी वॉलेट्स के अंदर, उनकी गाड़ियों के अंदर कैश को डिवाइड करके जाते हैं, ताकि अगर कोई एक लुटे तो सारा का सारा कैश जो है वो लुट ना जाए, ठीक है ना, सारा माल ना लुट जाए किसी एक के लुटने की वजह से। उम्मीद करते हैं कि एक ही लुटेगा, सब नहीं लुटेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये गुनाहों की सजा नहीं है, ये गुनाहों की सजा नहीं है भाई। गुनाहों की वजह से ये हो रहा है कि अल्लाह ताला ने खौफ को मुसल्लत कर दिया, अल्लाह ताला ने भूख को मुसल्लत कर दिया। भूख कैसे मुसल्लत कर दिया, हालांकि पेट भर भर करके मर रहे होते हैं, ठीक है ना, पेट भरे भर करके आज लोग मर रहे हैं, खाली पेट से कोई नहीं मर रहा होता, लेकिन जो जू का खौफ है, ठीक है, यानी बल्कि जू जो है, जू का अजाब, जू कहते हैं भूख को, तो जू का अजाब कैसे है कि आपको अपनी जरूरियात और ख्वाहिशात पूरी करने के लिए दिन रात जो है वो लगे होना होता है, दिन रात आपने एक करना होता है, 24-24 घंटे की जो है वो ड्यूटियां लोग कर रहे होते हैं, 12-12 घंटे की जो है वो नाइट शिफ्ट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी भूख के अजाब की ही एक शक्ल है, आपके काम पूरे नहीं होते, बिल्स जो है वो, उनका खर्चा जो है वो इतना ज्यादा हुआ हुआ होता है, ठीक है। हर बंदे को जो है वो जॉब करनी होती है, सुकून इत्मीनान के साथ घर में बैठ करके एक दूसरे से बात करना, मुलाकात करना, ये मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हर एक ने जॉब करनी है, हर एक ने जो है वो, ठीक है, और उसके लिए जो है वो पढ़ाई करनी है। जब इतना ज्यादा पढ़ाई करेंगे, इतने अच्छे जो है वो डिग्रियां हासिल करेंगे, तब कहीं जा करके कोई ढंग की जॉब मिलेगी, ताकि जो है वो पेट पालना नसीब होगा। तो अब पढ़ाई के लिए इतना ज्यादा लगे हुए हैं कि इंसान बनने की पढ़ाई जो है वो, उसके लिए टाइम ही नहीं है, राइट। इंसान बनने की पढ़ाई पढ़ने का टाइम ही नहीं है, पैसे कमाने की पढ़ाई पढ़ने के अंदर सारी जिंदगी खत्म हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि पैसे आएंगे तो भूख जो है वो कम होगी फिर, ठीक है, भूख मिटेगी, पैसे आएंगे तो भूख मिटेगी। तो ये अजाब है, ये अजाब है, हम नहीं मानते कि ये अजाब है, हम इनको इग्नोर करते रहते हैं कि नहीं जी ये तो होता ही रहता है, ये तो चलता रहता है दुनिया के अंदर, ठीक है। तो इन अजाबों को जो है, यानी कम से कम हम एक्नॉलेज तो करें ना कि ये अजाब है, ये ऐसे ही जो है वो दुनिया का दिनों शबो रोज नहीं है कि जो गुजरते रहते हैं, तो उसी तरीके से ये मामला भी गुजरते रहते हैं, ठीक है। हजरत ये मेंटालिटी कैसे खत्म करें, आप खत्म कर लें अपने अंदर से, आपको किसी ने मना किया खत्म करने से, दूसरों की खत्म करने के लिए जो 10,000 मरतबा बात हो चुकी है वही करते रहें, बलागुल मुबीन करें बस, और फिर अल्लाह ताला से दुआएं मांगे दूसरों के लिए, अपने अंदर तो खत्म करने के लिए बस तौबा कर लें कि अल्लाह मेरी मेरी तौबा, मुझे माफ कर दीजिए इस मेंटालिटी के ऊपर, ठीक है, बस यही काम कर लें, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने लिए तौबा और दूसरों के लिए दुआ और बलाहुल, बस तीन थ्री वर्ड आंसर है ये, और इसके अलावा आप कुछ करने की जरूरत भी नहीं है और आप कुछ कर भी नहीं सकते इसके अलावा, ठीक है। तो ये है दुनिया की जिंदगी में अजाब आ रहा होता है, लेकिन बहुत बड़ा अजाब के बिल्कुल जो है ना, वो जैसे कि नऊज बिल्ला जंग मुसल्लत हो जाए और सारी चीजें खत्म हो जाए, ये हर एक के साथ नहीं होता, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो उसको हजरत ने लिखा है कि अगर दुनिया में वैसा वाला अजाब ना भी आया तो मरने के बाद तो आएगा ना, ठीक है, कि सारी नेमतें अल्लाह ताला वापस ले लेंगे मरने के बाद, ठीक है। किसी को कोई सवाल है कि जो बात करी जा रही है ये इस बात के ऊपर कोई सवाल है किसी को? लोग जो है वो बैठ करके बातें करते हैं इस किस्म की ना, अब ये पिछले दिनों ये आप में से किसी के शौहर साहब जो है वो हमें बता रहे थे कि एक हम पार्टी में गए तो उस पार्टी के अंदर लोग इसी किस्म की बातें कर रहे थे, ठीक है, कि आखिरत में तो हमारे जो जो नेक अमाल है ना, तो आखिरत का जो अजाब है ना वो तो हमारे नेक अमलों की वजह से खत्म हो जाएगा, इसी किस्म की कोई बात कर रहे थे, मुझे अभी एग्जैक्टली सारी बात याद नहीं आ रही, लेकिन ऐसी बात कर रहे थे कि जिससे कि ये बात साबित होती थी कि उनके ख्याल में दुनिया में कोई अजाब नहीं आ रहा उनके ऊपर, है ना, दुनिया में उनके ऊपर कोई अजाब नहीं आ रहा, आखिरत में जो मसला अगर बनेगा भी तो नेकियां इतनी सारी कर रहे हैं ना, सऊदी अरब में रहते हैं तो हर थोड़े दिन के बाद उमरा करने पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, या कोई और इस किस्म का अल्लाह ताला ने माल पैसा दिया है, रियाल में कमाते हैं तो खूब सारा जो है वो उसको माल पैसे को जो है वो चैरिटी में देते रहते होंगे, कभी उधर चैरिटी कर दी, कभी उधर चैरिटी कर दी, ठीक है। तो अब समझ रहे हैं कि जी आखिरत के अजाब तो हमारे नेकियों की वजह से टल जाएंगे और दुनिया में तो हमारे ऊपर कोई अजाब ही नहीं है, तो भाई इसी वजह से बात समझाई जाती है कि आपको नजर नहीं आ रहा या आप तस्लीम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर अजाब है नहीं, ठीक है। इल्म हासिल करें कि अजाब होता क्या है इस बात का, गुना होता क्या है इस बात का, इल्म हासिल करें तब आपको बात समझ में आएगी, जहालत में तो कोई बात समझ में नहीं आती है ना, जाहिल इंसान को क्या बात समझ में आएगी, ठीक है। आगे फरमाते हैं कि यहाँ कयामत से मुराद मुरादे मुतारिफ मानी सॉरी, यहाँ कयामत से मुराद मुतारफ मानी कयामत के भी हो सकते हैं, यानी जो कि आम लोगों में कयामत का लफ्ज समझा जाता है वो मानी भी इससे मुराद हो सकते हैं, बगततन सात, ठीक है, ये जो लफ्ज है ना कि अचानक जो है वो सात आ जाएगी, और सात का लफ्ज जो है वो कयामत कुबरा के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो ये भी मुराद हो सकता है के लफ्ज साद से इस जगह कयामत, और ये भी हो सकता है कि लफ्ज साद से इस जगह कयामत सुगरा मुराद, कुबरा मुराद ना हो बल्कि सुगरा मुराद, ठीक है, जो हर इंसान की मौत पर कायम हो जाती है, जैसे कि मारूफ है कि मम माता फकद कामत कयामत हु, कि जो मर गया तो उसकी कयामत तो आज ही कायम हो गई, उसी वक्त कायम होगी उसकी कयामत, क्योंकि कयामत के हिसाब व किताब का इब्तदाई नमूना भी कब्र व बरजख में सामने आ जाएगा और वहां की जजा व सजा के नमूने भी यहीं से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो इनका सवाल था ना कि कैसे जो है वो करें ये वाला काम, तो हमने आपको बलागुल मुबीन के अल्फाज से इसका जवाब दे दिया, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक बात और तफसीलन अगर बस इतनी सी बात कर दें कि ये जो आप बातें सुन रही हैं ना, जिस जिससे कि आपको फिक्र पैदा हो रही है, ठीक है ना, आपको बात समझ में आ रही है कि वाकई दुनिया के अंदर इस शक्ल के अजाब होते हैं, तो इनको अपने पास लिखें ना, इनको अपने पास लिखें, ठीक है, और इन्हीं को जो है वो फिर इलेबोरेट करके तब खोल खोल करके उन लोगों को समझाएं कि जो के समझ रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में बड़े सुकून और इत्मीनान है, ठीक है, तो ये को बात करें और इनफरादी तौर पर उनको बताएं कि भाई आपकी ज़िंदगी में कहाँ से सुकून और इत्मीनान है, आप जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये इत्मीनान वाली ज़िंदगी तो नहीं होती, और दूसरी चीज़ के मुआशरे के अंदर जो इबरतनाक वाकयात हर जगह फैले हुए हैं, हर वक्त होते रहते हैं,
ठीक है, तो उन इबरतनाक वाकयात को लोगों के सामने जरा रखा करें ना, कि देखो तुम जो समझ रहे हो ना कि एवरीथिंग इज ग्रेट, एवरीथिंग इज कूल, सब ठीक चल रहा है, तो ये तुम भूल जाते हो कि ये क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये अच्छी चीजें हो रही हैं। ठीक है, खुद लोग जो है वो कहेंगे क्या, नहीं यार ये तो वाकई बड़ा खराब हो रहा है। ठीक है, तो इबरतनाक वाकयात की जो है ना वो अपने पास कलेक्शन रखनी चाहिए, ताकि लोगों को जरा समझा सकें कि भाई आज सब चीजें ठीक तो थोड़ी हो रही है, बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं और गुनाहों की वजह से चल रहे हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, फिक्र ना करें, कोई टेंशन में नहीं आएगा इससे, ये नहीं है कि आप जो खामखा लोगों को टेंशन दे रही हैं, किसी को टेंशन नहीं होने वाली, बस हम तौबा करने की तौफीक मिल जाए ये बड़ी बात है, टेंशन वेंशन किसी ने नहीं लेनी, कुछ भी करना करें। अच्छा, हासिल ये है कि नाफरमानी करने वालों को इन आयात में मुतनब्बेह किया गया है कि अपनी इस नाफरमानी के साथ बेफिक्र होकर मत बैठ। ठीक है, हजरत यानी हजरत के अल्फाज यही हैं कि अल्लाह ताला यही चाहते हैं ना कि हम बेफिक्र होकर के ना बैठ जाएं, कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज ग्रेट एंड बड़ा अच्छा चल रहा है सारा मामला, बल्कि और अच्छे से अच्छा हुआ चला जा रहा है। ठीक है, अब रोबोट्स आ रहे हैं, वो हमारे सारे काम कर लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, ChatGPT आ गई है, और इतनी अच्छी इजादात हो गई हैं, और पता नहीं और क्या क्या झूठ जो है वो फैलाया हुआ है कि ईमान वालों को फतह नसीब हो गई है, पता नहीं और क्या क्या बात जो है वो लोग फैलाई हुई है, तो ये बेफिक्र होकर मत बैठो, गुनाह नजर नहीं आ रहे, गुनाहों की जो है वो कसरत जो है वो बढ़ती हुई तुम्हें नजर नहीं आ रही। ठीक है, बेहयाई और बेशर्मी और बेगैरती, ठीक है ना, ये तुम्हें नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो इन चीजों के साथ होते हुए ईमान वालों की फतह का मतलब क्या है? ठीक है, क्या मतलब है ईमान वालों की फतह, और उसकी सानी बेशर्मी के ऊपर ईमान वालों की फतह हो रही है, क्या मतलब है यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ठीक है, तो वही फरमा रहे हैं कि अपनी इस नाफरमानी के साथ बेफिक्र होकर के मत बैठो, हो सकता है कि इसी दुनिया की जिंदगी में तुम पर अल्लाह ताला का कोई अजाब आ जाए जैसे कि पिछली उम्मतों पर आया है, और अगर ये भी ना हो तो फिर मौत या कयामत के बाद का हिसाब तो यकीनी है, यानी ईमान है। यही तो है कि नबी अलैहिस्सलाम जो खबरें लेकर के आए वो बिल्कुल सही खबरें हैं, कि क्या खबर लेकर के आए कि मरने के बाद हिसाब किताब होगा। ठीक है, तो तुम नबी अलैहिस्सलाम को कहो कि जी हाँ ये अल्लाह के नबी हैं, लेकिन उनकी बात को कहो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मरने के बाद हिसाब किताब नहीं होने वाला है, तो भाई तुमने क्या नबी माना फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को, कि अगर तुमने उनकी बात का इनकार कर दिया, ठीक है, कि नहीं हिसाब किताब कोई नहीं होने वाला है, तो तुमने तो नबी का इनकार कर दिया ना, उनके नबी होने का इनकार कर दिया ना। ठीक है, अब कसीदे पढ़ने से तो कोई फायदा नहीं है, नाते पढ़ने से तो कोई फायदा नहीं है, क्या फायदा है तुम्हारी नाते पढ़ने का या नाते सुनने का, अगर तुमने उनकी उनको नाउज बिल्ला झूठा कह दिया कि वो जो बात बता रहे हैं वो नहीं होने वाली है, तो तुमने तो उनके ऊपर झूठ की तोहमत लगा दिया ना। अब नाते पढ़ते रहो तुम अपने आप को, यानी मौसीकी का ऑल्टरनेटिव अच्छा मिल गया है नाते, ठीक, तो फिर तो वो तुम्हारे लिए मौसीकी की हैसियत रखती है, उससे ज्यादा तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, सुरीली आवाज के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के कसीदे पढ़ना, ठीक है, तो कहते हैं कि लेकिन अपनी जिंदगी के महदूद औकात और इसमें पेश आने वाले नहायत महदूद तजुर्बात पर पूरी दुनिया और पूरे आलम को कयास करने वाले इंसान की तबीयत ऐसी चीजों में हीला जू होती है, यानी हीले तलाश करती है, कोई ना कोई बहाने तलाश करती है, थोड़ी सी नॉलेज होती है हमें और उसकी बुनियाद पर जो है ना हम समझते हैं कि जी चूंकि मेरी जिंदगी बड़ी अय्याशी की गुजर रही है, इस वजह से सबकी जिंदगी अय्याशी में गुजर रही है। ठीक है, तो वो हीले बनाती है, तो वो फिर ना क्या कहती है के अंबिया अलैहिस्सलाम के इंजार और तंबीहात को मौहूम ख्यालात कहकर टाल जाते हैं। ठीक है, कि ये अंबिया जो डराने वाली बातें कर रहे हैं ना, इंजार का मतलब क्या होता है, डराना, और तंबीहात का मतलब कि वही तंबीह करना कि भाई ना करो ऐसा वरना तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा जैसा किसी दूसरे के ऊपर अजाब आया था। ठीक है। तो ये इंजार और तंबीहात, तो अंबिया जो है वो इंजार और तंबीहात करते हैं, तो उनको ना मौहूम ख्याला, मौहूम क्या चीज होती है, वहमी, वहम, वहम का ही ये दूसरा सीगा है मौहूम, ठीक है, यानी जिसकी कोई हकीकत ना हो, जिसके अंदर गैर हकीकी किस्म की बात है, ठीक है। तो अंबिया वाली बातें जो है ना, उनको गैर हकीकी बातें कह करके जो है ना ये टाल जाते हैं, खुसूसन जबकि ऐसे हालात भी जमाने में सामने आते हैं कि बहुत से लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली नाफरमानियों के बावजूद फूल फल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, दुनिया में माल और दौलत, इज्जत और शौकत सब कुछ उनको हासिल है। एक तरफ ये मुशाहिदा कि नाफरमानी करने वाले लोगों को दुनिया की माल और दौलत और शान और शौकत हासिल है, ये क्या है, ये हमारा मुशाहिदा होता है, ठीक है। जैसे आप स्पोर्ट्स स्टार्स को देखें, हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स में उनकी माहाना तनख्वाह होती है, और वो स्पोर्ट्स स्टार्स की क्या जिंदगी होती है, कौन सा वो नेकी तकवा वाली जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और फिल्म स्टार्स वो उनसे भी आगे बढ़ करके, स्पोर्ट्स स्टार्स से भी ज्यादा माल दौलत जो है वो फिल्म स्टार्स के पास होता है, और उनकी जिंदगी जो है वो और भी ज्यादा गुनाह और बेहयाई के ऊपर होती है, ठीक है। उसी तरीके से आप अपने जो है वो सरमायादार लोगों को देख लें, इंडिया के अंदर अभी जो एक आई थी, पता नहीं कौन था वो, जिसकी हमने शेयर भी किया था उस वाले मजमून को, कि जिसके बेटे की, अंबानी गालिबन ना, तो अंबानी के बेटे की शादी नहीं बल्कि शायद वो उसकी मंगनी वगैरह कोई थी, तो उस मंगनी में जो है वो उसने यानी अमेरिका से वो जो हिलरी क्लिंटन थी उसको बुलाया हुआ था, और कितने सारे जो है वो अदाकारों को और किस किस को बुलाया हुआ था, और हर एक को पता नहीं कितना माल असबाब जो है वो तोहफे तहाइफ के अंदर खाली दे दिया था, बुलाना एक तरफ और तोहफे तहाइफ देना एक तरफ, यानी और किस किस्म की वो उसकी सेलिब्रेशन थी, ठीक है, यानी आप तस्वुर नहीं कर सकते। उसी तरीके से आप मुसलमानों के दरमियान भी देख लें, हैं अभी जो 400 मिलियन डॉलर्स का जो है वो तैयारा उठा करके तोहफे में दे दिया है, और अभी चंद दिनों पहले वो पता चला था ना कि कोई भाई साहब ने दुबई नहीं, यहाँ पे रियाज में किसी ने 24 लाख रियाल, रियाल है रुपए नहीं, 24 लाख रियाल में अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट खरीदी है। क्या खरीदी है, गाड़ी नहीं, गाड़ी की नंबर प्लेट खरीदी है। आप तस्वीर कर सकते हैं 1 लाख कितना होता है, और 1 लाख रियाल कितना होता है, और 24 लाख कितने होते होंगे, और ये किसी गैर मुस्लिम, किसी हिंदू और ईसाई और यहूदी की बात नहीं हो रही है, ये एक मुसलमान, कम से कम नाम का तो मुसलमान है ना वो, राइट, अरब भी है और मुसलमान भी है, चाहे उसके हरकतें जैसी भी हों, अकायद जैसी भी हों, लेकिन बहरहाल मुसलमानों में उसका शुमार होता है, उसने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट ली, ठीक है। तो यानी मुशाहिदा भी ऐसा मुशाहिदा, ठीक है, तो ये हमारा मुशाहिदा होता है। और दूसरी तरफ अल्लाह के पैगंबर की ये तखवीफ यानी खौफ दिलाना, अल्लाह के पैगंबर का ये खौफ दिलाना कि नाफरमानी करने वालों पर अजाब आया करते हैं, जब इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तो उनकी हीला जू तबीयत, जू का मतलब होता है यानी कोई चीज तलाश करने वाली ना, जैसे दुआ जो, ठीक है, दुआ तलाश करने वाला कि भाई किसी तरह मुझे लोगों की दुआओं मिल दुआएं मिल जाएं, उसको कहते हैं दुआ जो, उसी तरह हीला जो उसको कहेंगे जो कि हीले तलाश करता है, बहाने तलाश करता है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को देखता है ना, कि एक तरफ पैगंबर तो खौफ दिलाए चले जा रहे हैं नाफरमानी करने पर, और दूसरी तरफ जो है वो ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं नाफरमानी करने वाले, तो इनकी जो हीला जू तबीयत होती है ना, जैसे आपके रिश्तेदार जिनकी आप हर वक्त रोना रोती रहती हैं कि वो बात नहीं मानते, वो जो है वो दुनिया के अंदर मस्त मलंग हैं, बात नहीं सुनते, तो उन्हीं लोगों की बात हो रही है, ठीक है, कि वो हीला जू तबीयत होती है उनकी, तो उनकी हीला जू तबीयत, और शैतान उनको यही सिखाता है कि पैगंबर का कौल एक फरेब या मौहूम ख्याल है, नाउज़ुबिल्लाह एक फरेब है, एक धोखा है, ठीक है, और एक वहम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यानी वही बात जो के सिर्फ आपके रिश्तेदार नहीं करते, बल्कि अक्सर औकात आप खुद भी करती हैं और हम भी करते हैं, कि हम गुनाह करते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो ये वाला जो जुमला है कि गुनाह से कुछ नहीं होता, तो ये जुमला तो वो लोग भी कह रहे हैं और हम लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि गुनाह तो हम लोग भी करते हैं, चाहे दरस कुरान सुनते हो, राइट, और चाहे जो है वो बड़ा जो है वो किताबें पढ़ते हों और तिलावतें करते हों और तस्बीहात फेरते हों, और लेकिन कितने हमारे ऐसे गुनाह हैं कि जिनके बारे में हमारा यही एटीट्यूड होता है कि ये कुछ नहीं होता, यानी हमें खौफ नहीं होता गुनाह गुनाह के करने पर, हमें पसीने नहीं छूटते कि अगर हमसे गुनाह हो रहा है या गुनाह की तरफ हम अगर हमारे कदम बढ़ रहे हैं तो हमारे दिल की धड़कनें तेज नहीं होती हैं, ठीक, हमें फिक्र नहीं होती कि यार अब इसका हिसाब भी देना पड़ेगा मुझे, तो कम से कम जो है वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला से तौबा तो मैं शुरू कर लूँ, माफी मांगना तो मैं शुरू करूँ ना, कम से कम अगर गुनाह से बच नहीं पा रही तो कम से कम माफी तो मांगना शुरू करूँ, नहीं ऐसे बेखौफ होकर के गुनाह करते, ठीक है। तो इस मामले में तो वो और हम बराबर हैं, और यही असल मामला है, जिसको कि हमें ख़त्म करना चाहिए इससे पहले कि हम दूसरों को कहें कि वो क्यों नहीं बात सुनते और वो क्यों नहीं इसको संजीदा लेते, ठीक, खुद अपने अंदर तो ख़त्म करें, यानी वही तौबा, ठीक है, खुद तौबा करें। तो क्या, एक मिनट, क्या लिख दिया आपने, इस टॉपिक को इतनी बार कही है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है मुझे यही एहसास होता है कि मेरा कोई गुनाह की वजह से, गुनाह की वजह से होता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो इसके जवाब के लिए मजकूर सदर आयात में हक ताला पिछली उम्मतों के वाकयात और उन पर जारी होने वाला कानून कुदरत बयान फरमाया है। हम तो दरस कुरान कर रहे हैं ना, तो आप दर कुरान में जो ये टॉपिक आएगा, तफसीर में जो ये टॉपिक आएगा तो हम आपको कहेंगे, ठीक है। तो अब तस्वीर में कोई अच्छा सा टॉपिक आ जाए, यानी अच्छे से मुराद ये कि हमारे मिजाज के मुताबिक कोई टॉपिक आ जाए, तो फिर वो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि हम स्किप करके हम फिर वही कोई खौफनाक बात पे आ जाएंगे, भाई कोई हिम्मत अफजा बात आएगी तस्वीर के अंदर तो हम हिम्मत अफजा बात करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और जब कोई खौफ दिलाने वाली तख्वीफी बात आएगी तो हम तख्वीफी बात करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को फॉलो करने का ये फ़ायदा होता है कि जो अल्लाह ताला चाह रहे हैं वही आ रहा है बस उसके अंदर, और वही हम पढ़े चले जा रहे हैं, तो खाली नेगेटिविटी भी वो हमारा कसूर नहीं है, अगर उसमें नेगेटिविटी आ रही है तो वो भी अल्लाह की तरफ से है भाई, और अगर पॉजिटिविटी आएगी तो वो भी अल्लाह की तरफ से होगी। एनीवे तो कहते हैं कि इसके जवाब के लिए मजकूर उस सदर आयात में हक ताला ने पिछली उम्मतों के वाकयात और उन पर जारी होने वाला कानून कुदरत बयान फरमाया है। इरशाद फरमाया, वलकद अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फअखज़नाहुम बिलबअसाई वद्दर्राई लअल्लहुम यतज़र्रउन, यानी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अपने रसूल दूसरी उम्मतों की तरफ भेजे और दो तरह से उनका इम्तिहान लिया गया, अव्वल कुछ सख्ती और तकलीफ उन पर डालकर ये देखा गया कि तकलीफ और मुसीबत से घबरा कर भी ये अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होते हैं या नहीं होते, जब वो इसमें फेल हो गए यानी नहीं मुतवज्जे हुए अल्लाह की तरफ, और बजाय अल्लाह ताला की तरफ रुजू होने और सरकशी से बाज आने के वो और ज्यादा इसमें मुनहमक हो गए, ठीक है, और ज्यादा सरकशी में मुनहमक हो गए। सरकशी क्या चीज होती है, सर को कश कर देना, वो सरकशी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय सरकशी, ठीक है, चले आप बता दें, मैं तो बोलता चला जाऊंगा, तो आप बता दें सरकशी का मतलब क्या होता है, सरकशी में मुनहमिक हो गए, व्हाट डू यू मीन सरकशी में मुनहमिक हो जाना, क्या चीज होती है भाई सरकशी, गुनाहों पर डटे रहना, सरकशी का जो खास लफ्ज है, तो अनानियत। अच्छा, ग्रहों पर डटे रहना, अनानियत। अच्छा, सरकशी का जो लफ्ज है ना, असल में इसकी ये सवाल पूछने की भी एक खास वजह है ना, वरना ग्रहों पर डटे रहना तो रिबेलियन। रिबेलियन तो भाई, कोई रिबेलियन का मतलब क्या होता है? रिबेलियन बड़ा अच्छा जवाब है आपका, लेकिन रिबेलियन अगेंस्ट होम, माफी की जगह और गुनाह में मुबतला होना, नाफरमानी, मन मर्जी, नाफरमानी पर शर्मिंदा होना, जिद में आके बगावत, बात ना मानना और उसके खिलाफ करना। ठीक है, आगे इसका जवाब आ रहा है कुरान मजीद के अपने अल्फाज के अंदर आ रहा है, लेकिन हम वही देखना चाह रहे थे कि वो अल्फाज तो हम पहले भी कई क्लासों से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने जब तर्जुमा पढ़ा था तो उस वक्त भी हमने पढ़ा था, फिर थोड़ा से तफसीर के अंदर दोबारा से ये बात डिस्कस करी थी। ठीक है, तो अब जो है ना, वो हमने कहा कि आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सरकशी का मानी क्या था? जी, बड़े के हुक्म की खिलाफ वर्जी, यानी रसूल के, ठीक है ना, नसीहत करने वाले के, नासिह के, उसकी नसीहत की खिलाफ वर्जी, इसको सरकशी कहते हैं। ठीक है, और इसी को गुनाह कहते हैं। जो नसीहत की जा रही है उसको भुला देना, उसके खिलाफ करना, उसको छोटा समझना, इसको सरकशी कहते हैं। नॉट डूइंग समथिंग विच पीपल हैव एज्यूम टू बी रॉन्ग। ठीक है, जो लोगों ने गुमान कर लिया कि ये अच्छी बात नहीं है, तो अब आप वही काम करे चले जा रहे हैं जो लोगों ने गुमान किया हुआ कि ये अच्छी बात नहीं है, तो ये जो है ना, वो सरकशी कहलाएगी। नहीं, सरकशी जो है वो नसीहत के अगेंस्ट होती है, जैसे इन्होंने लिखा ना लफ्ज रिबेलियन। तो भाई रिबेलियन क्या चीज होती है? कोई अथॉरिटी होती है, कोई गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट के खिलाफ जब कोई रेबेल करता है, जब कोई बगावत करता है, तो उसको बगावत कहते हैं ना। कोई बैठे बैठे उछलना कूदना शुरू कर दे तो उसको बगावत तो नहीं कहते, है ना भाई? किसी अथॉरिटी के, किसी बड़े के खिलाफ बगावत होती है ना, यानी अगर बड़ा नहीं हो तो फिर बगावत कैसी? बगावत होगी नहीं, है ना? आप जो मर्जी आए करें तो उसको बगावत को थोड़ी कहेंगे, बगावत उस वक्त होगी ना जब कोई बड़ा हो। तो यही मामला सरकशी का भी है। सरकशी जो है ना, ये किसी शख्सियत के खिलाफ करना, इसको सरकशी कहते हैं। वो शख्सियत कौन सी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकशी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, ठीक है, उनकी बात, उनकी नसीहत। तो इसी वजह से कुरान मजीद में भी आगे क्या है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जो उनको नसीहत की गई थी, तो उस नसीहत को जब उन्होंने भुला दिया, तो ये है उनकी सरकशी। ठीक है, तो ये अब हम समझना है कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, कौन सी यानी खास बात है इसके अंदर। भाई बहुत खास बात है, बहुत बड़ी खास बात है ये। ठीक है, इससे क्या चीज हमारे सामने अहमियत अहम बनती है, अगर हम इसको इस नजर से देखें, ठीक है, तब क्या चीज अहम बनती है? जो एक्टिव नसीहत हमें की जा रही है उसकी अहमियत खुल के सामने आती है, अजम्पशंस की अहमियत खुल के सामने नहीं आती, कि जो आपने एज्यूम किए हुए हैं कि ये गुनाह के काम है या ये गलत काम है, वो नहीं, बल्कि जो एक्टिवली नसीहत आपको की जा रही है उसकी अहमियत है, असल में उसकी अहमियत है, उसकी खिलाफ वर्जी करना वो सरकशी कहलाती है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। चले, आगे कहते हैं कि बजाय अल्लाह ताला की तरफ रुजू होने और सरकशी से बाज आने के, वो और ज्यादा उसमें मुनहमिक हो गए, यानी नसीहत करने वाला उनको नसीहत कर रहा था, लेकिन वो और जो है वो उसकी नसीहत को जो है वो धुतकारते रहे और मजाक उड़ाते रहे और इग्नोर करते रहे। तो अब उनका दूसरी किस्म का इम्तिहान दिया गया कि उन पर दुनियावी ऐश और राहत के दरवाजे खोल दिए गए। दुनियावी ऐश और राहत, वही जो अक्सर हम में से दुनियावी ऐश और राहत की जिंदगी गुजार रहे हैं, और इस वक्त ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर अक्सर यही मामला है, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बहुत तरक्की कर ली है। पहले कपड़ा नसीब नहीं होता था आसानी के साथ, ठीक है ना, क्योंकि कपड़ा बनना और कपड़े की कीमत जो थी वो हर एक के लिए अफोर्ड करना आसान नहीं होता था। लेकिन अब जो है वो फैक्ट्रीज के अंदर कपड़े की इतनी बहुतात हो गई कि अब कोई जो है वो बगैर कपड़े के या कपड़े के अफोर्ड करना किसी के लिए नामुमकिन नहीं है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो बहुत महंगे वाले कपड़े वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अब देख लें आपके घर के अंदर कितने कपड़ों की तादाद है ना। हत्ता कि जो आपके पुराने कपड़े हो जाते हैं जो कि आप अब खुद नहीं पहनना चाहती हैं या अपने बच्चों को अब नहीं पहनाना चाहती हैं, तो अब एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है कि भाई क्या करें इन कपड़ों का, क्योंकि हर एक के पास कपड़े और बड़ी बहुतात में हर एक के पास कपड़े हैं, हद तो गरीबों के पास कपड़े मौजूद हैं, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि भाई कपड़ों का क्या किया जाए। उसी तरह खाने पीने की चीजें, खाने पीने की चीजों की बहुतात मौजूद है इस वक्त, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से चाहे वो मांग के मिले चाहे वो लंगर के अंदर जा करके मिले, गरीब को भी जो है वो खाने पीने की वाफिर मकदार में चीजें मिल जाती, ठीक है। तो इस वक्त दुनिया के अंदर जो है ना वो दुनियावी ऐश और राहत के दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है, इल्ला माशा अल्लाह के जहां पर वो कोई सैंक्शंस लगा करके, एम्बार्गो लगा करके या बाकायदा जो है ना वो रास्ते बंद कर दिए उन चीजों के पहुंचने के, वो स्पेशल पूरी दुनिया में देख लें इस वक्त ये काम अगर हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, एक छोटे से खत्ता है जमीन के अंदर जिसको गजा कहते हैं, ठीक है ना, और वो भी जो है वो सारी सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें आ रही हैं उसी की बुनियाद पर हमें पता चल रहा है कि भाई वहां पे ऐसा हो रहा है, वहां पे ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, जाके तो कोई भी नहीं देख सकता कि वहां पे हो क्या रहा है असल, ठीक है। तो बस वहां, और वो कितना बड़ा इलाका है पूरी दुनिया के अतबार से देखा जाए तो कितना बड़ा इलाका है, या एक दो और जगह शायद सूडान के अंदर जो जंग जहाँ पे सुना है बहुत बुरे हालात है वहां पे, लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, दुनिया के अंदर बहुत सारे इलाके हैं, वहां पे तो ऐसा नहीं है मामला। तो दुनियावी ऐश और राहत के दरवाजे खोल दिए गए और हयात दुनिया से मुताल्लिक उनको सब कुछ दे दिया गया कि शायद ये लोग नेमतों को देखकर अपने मुनइम और मुहसिन को पहचाने और इस तरह से उनको खुदा याद आ जाए, लेकिन वो इस इम्तिहान में भी नाकाम साबित हुए, ठीक है, और अपने मुहसिन व मुनइम को पहचानने और उसका शुक्र अदा करने के बजाय वो ऐश और इशरत की भूल भुलैयों में ऐसे खो गए कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और तालीमात को यकसर भुला बैठे, ठीक है, एकदम जो है ना वो उन्होंने भाई भुलाना वाला अपनी रविश जो है वो नहीं छोड़ी और चंद रोजा ऐश में बदमस्त हो गए। तो दोनों तरफ के इम्तिहान व आजमाइश में नाकाम रहने के बाद उन पर हर तरह की हुज्जत तमाम हो गई, तो अल्लाह ताला के अजाब में फिर दफातन पकड़ लिए गए और ऐसे नीस्त और नाबूद कर दिए गए कि उनका सिलसिला नस्ल भी बाकी ना रहा। ये अजाब पिछली उम्मतों पर अक्सर इस तरह आया कि कभी आसमान से, कभी जमीन से, कभी किसी दूसरी सूरत से एक अजाब आया, यानी आसमान से या तो ऐसी बिजली कड़की या पत्थर बरसे या कुछ हुआ, और कभी जो है वो जमीन से यानी जलजला या आतिशफिशां ऐसे जमीन से निकला गया हर एक को जो है वो, या सैलाब जो है वो ऐसा आया, सैलाब भी जमीन से, ठीक है, क्योंकि समंदर भी जो है वो जमीन ही के अंदर होता है ना, तो ऐसा अजाब आया कि पूरी कौम की कौम उसमें भस्म होकर रह गई, ठीक है, पूरी कौम जो है वो खत्म हो गई। नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम को पानी के ऐसे तूफान आम ने घेर दिया जिससे पहाड़ों की चोटियां भी महफूज ना रह सकी। कौम आद पर हवा का शदीद तूफान 8 दिन तक मुसलसल रहा जिससे उनका कोई फर्द बाकी ना बचा। कौम समूद को एक खौफनाक आवाज के जरिए से तबाह कर दिया गया। कौम लूत अलैहिस्सलाम की पूरी बस्ती को उलट दिया गया जो आज तक उर्दुन के इलाके में एक अजीब किस्म के पानी की सूरत में मौजूद है जिसमें कोई जानवर, मेंढक, मछली वगैरह तक जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए उसको बहरे मैयत के नाम से भी मौसूम किया जाता है, डेड सी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेड सी ना, और बहरे लूत के नाम से भी उसको सम्मम किया जाता है, ठीक है। तो ये जो बड़ी बड़ी बस्तियों के जो अजाब हैं ये कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला बार बार रिपीट करते रहते हैं, ठीक है ना। غرض پچھلی امتوں کی نافرمانیوں کی سزا اکثر تو ان مختلف قسم کے عذاب کی شکل میں آئی جس میں بیک وقت پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ بظاہر طبعی موت سے مر گئے، یعنی اپنا وقت ان کے اوپر، جیسے کہ کسی مسلمان کو موت آتی ہے اسی طرح کسی کافر کو موت آ گئی، اور آگے ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہا، یعنی جو ان کی اچھی طریقے سے ان کا نام لینے والا آگے کوئی باقی نہ رہا. جبکہ ایمان والے جو تھے، موت تو ان کو بھی آ گئی لیکن ان کی یادگاریں اور یادداشتیں جو ہے وہ لوگوں کو اچھے انداز میں ان کو یاد رہی، اور تو دونوں طرح سے عذاب آتے ہیں. ٹھیک ہے، اجتماعی شکل کے عذاب پوری پوری قوم کے اوپر آ جاتے ہیں، یا انفرادی شکل سے عذاب جو ہے وہ اس بندے کے اوپر آتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر قبر کا عذاب جو ہے وہ آگے جاری رہتا ہے. ٹائم کتنا ہو گیا؟ 9:39 ہو گئے. بس انشاءاللہ اگلی کلاس میں امید ہے کہ ہم اس کے معروف مسائل مکمل کر لیں گے. سو یہاں پہ ہمارا آج کا کلاس ہے وہ روکتے ہیں. کسی کو کوئی سوال ہو یا کوئی کامنٹ وغیرہ ہو تو لکھ کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.